नमस्कार, मैं दीप्ति राय। द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र हेतु बच्चन सिंह द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। निवेदन: इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुख ही इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। अतीतोन्मुखता हमें कहीं ले नहीं जाती, बल्कि एक तरह की भावना मयता में बांध कर सही कर्तव्य से विमुख बना देती है। अतीतोन्मुखता हमें पुनरुत्थानवादी बनाती है, तो भविष्योन्मुखता सृजनात्मक। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। यह होकर ही वह रचनात्मक हो सकता है। इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है, वस्तुतः एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों में इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र और जाति को अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। इस घटनाओं में भी देश और जाति का नक्शा बदल जाता है। यह मानकर चलना होगा कि इतिहास का कोई दर्शन इतना मुकम्मल नहीं जिसके आधार पर इतिहास को उसकी पूरी समग्रता में समेटा जा सके। जितना यह इतिहास के साथ सच है, उतना ही साहित्य के साथ भी। पर इतिहास के लेखक की तरह साहित्य के इतिहास का लेखक तथ्यों के अर्थापन में उतना स्वतंत्र नहीं है। इतिहास लेखक की तरह उसके पास तरह तरह के आंकड़े नहीं होते। आधे अधूरे, सही और गलत आंकड़े उसके सामने ग्रंथ होते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों के संबंध में तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक कहा जा सकता है, पर आधुनिक काल के ग्रंथों के संबंध में तो यह भी नहीं कहा जा सकता। अतः साहित्य के इतिहासकार को दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसे ऐसा इतिहास लिखना पड़ता है जो साहित्यिक भी हो और ऐतिहासिक सामाजिक भी। इतिहास के चौखटे में साहित्य को फिट कर देना साहित्य का इतिहास नहीं है। इतिहास के पुष्ट्यर्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौखटे में फिट करने लगे हैं। बहुत से वादग्रस्त साहित्य इतिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रथित कर देते हैं, पर वह साहित्य का इतिहास न होकर समाजशास्त्रीय इतिहास हो जाता है। इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष, जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में योग देता है, उपेक्षित रह जाता है। साहित्य के ग्रंथ वे ही रहते हैं, पर काल बदलता जाता है, जिसके बदलाव के बदलाव में भी कुछ शेष बचा रहता है, या हर काल के नए अर्थापन के लिए कुछ छूटा रहता है, वह साहित्य श्रोण होता है। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। वह इतिहास लेखन का उपकरण बन सकता है, पर साहित्य का इतिहास लेखक उस पर केवल चलता ध्यान देगा। वह तो उन ग्रंथों को देखता है जो इतिहास को गति देने में, मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदलता रहा है कि साहित्य के बदलाव से भी उसे समझा जा सकता है। इस बदलाव को, क्षिप्रतर बदलाव को, साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। यह पकड़ तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकती जब तक समसामयिक अखबारी साहित्य को श्रेष्ठ भविष्योन्मुखी साहित्य से अलगाया न जाए। प्रत्येक युग का आधुनिक काल ऐसे साहित्य से भरा रहता है जो साहित्योतिहास के दायरे में नहीं आता, किंतु यह जरूरी नहीं है कि हम अपने इतिहास के लिए ग्रंथों का जो अनुक्रम प्रस्तुत करेंगे वह कल भी ठीक होगा, अपरिवर्तनीय होगा। इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मानवीय सृष्टि रहेगी। आरंभ में श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो अब बहुत पुराना पड़ गया है। यह इतिहास मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, पर उनका अपेक्षित पर्यावरण सर्वत्र दृष्टि में रखा गया है। शुरू से ही भविष्योन्मुखता को लक्ष्य में रखने के कारण श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप रेखांकित हो उठे हैं। बच्चन सिंह द्वारा। भूमिका, आधुनिक काल, नामकरण तथा काल विभाजन। साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। किसी कालखंड की शुरुआत किसी समय से होती है, इससे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब तक होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों और कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होगा। इस बदलाव को जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा रोमांटिक लहजे और गियर्सनी शैली में अप्रत्याशित और कुतूहल पूर्ण कहते हैं, हिंदी साहित्य तृतीय खंड, भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग, तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसके विकास का एक क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ठीक 19वीं सदी के मध्य में होता है। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष मान लिया, किंतु यह वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करता। इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टतः अलगाने वाली तथा इस अलगाव के लिए खुद भी बहुत कुछ उत्तरदायी होनी चाहिए। यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए तो उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला देने वाला सिद्ध हुआ। इससे पहले देश के अन्य भागों में छिटपुट विद्रोह हो चुके थे। उदाहरणार्थ बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817, विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794 आदि। सन 1857 का विद्रोह भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के एक सीमित भाग तक ही फैल कर रह गया था। यद्यपि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था, किंतु अपनी प्रकृति और संरचना में यह भिन्न था। इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, किंतु इसकी स्थितियां वर्षों पहले से बन रही थी। बाद में इसमें जमींदार, किसान, कारीगर और सामंत भी जुट गए। छोटी सी शुरुआत जनता की व्यापक लड़ाई में बदल गई। इसे दबाने में अंग्रेजों के छक्के छूट गए। इसी के फलस्वरूप कंपनी राज्य का अंत हुआ और महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र जारी करना पड़ा। देश के मिजाज को बदलने तथा राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख करने में इसका विशेष महत्व है। अतः इसी को आधुनिक काल का प्रारंभिक वर्ष मानना सर्वाधिक तर्कसंगत है। नामकरण, आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है, मध्यकाल से भिन्नता की और नवीन इलौकिक दृष्टिकोण की। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे तोड़कर गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीतिकाल की कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंधे घाटों में बह रहे थे। इन छंदों में न वैविध्य था और न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग, आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन की धारा विविध स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह है अलौकिक दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी, पर आधुनिक युग में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा अलौकिक ही है। सुधार परिष्कार अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई, ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। उपविभाग, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया है वह एक सूत्रता के अभाव में विसंगति पूर्ण हो गया है। उन्होंने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। ये दोनों खंड एक दूसरे से इतने पृथक हैं कि उनमें एक तांता नहीं आ पाती। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खंडी बोली गद्य का विकास विवेचित है। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। इसे तीन उत्थानों में विभाजित किया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्यखंड में भी दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। नई धारा के भी तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। शुक्ल जी के गद्यखंड और काव्यखंड एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। एक की प्रवृत्ति का दूसरे की प्रवृत्ति से कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है मानो गद्यखंड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है तो काव्यखंड में दूसरी प्रवृत्ति। उदाहरणार्थ, काव्यखंड दूसरे प्रकरण में तृतीय उत्थान, काव्य में जो छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है, तथा गद्यखंड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता नहीं निरूपित की जा सकती। इस खंड दृष्टि के कारण इतिहास का नैरंतर्य ओझल हो गया है। परवर्ती इतिहासकारों ने प्रायः शुक्ल जी का अनुगमन किया। आधुनिक काल के इतिहास लेखन में सामान्य रूप से उनकी उत्थानवादी शैली ही स्वीकृति कर ली गई। कुछ लोगों ने आधुनिक काल के विकास के प्रथम दो चरणों को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहना अधिक संगत समझा, किंतु इन नामों की ग्राह्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की परिकल्पना कर लेने पर युगों की बाढ़ आ गई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग से प्रकाशित हिंदी साहित्य तृतीय खंड में उपन्यासों के संदर्भ में प्रेमचंद युग और नाटकों के संदर्भ में प्रसाद युग की कल्पना की गई। पता नहीं समीक्षा के संदर्भ में शुक्ल युग क्यों नहीं लिखा गया, जितने युग उतने संदर्भ। एक इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है। अनेक लेखकों द्वारा लिखे जाने के कारण इसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मिलेंगे। पूर्व पीठिकाओं की स्थापनाओं के साथ विधाओं की संगति नहीं बैठ पाती। उदाहरणार्थ भारतेंदु युग को लिया जा सकता है, इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण, पर भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण का दूर का भी रिश्ता नहीं है। छायावाद युग सामान्यतः सर्वमान्य है, इसे विभाजक रेखा मानकर कालों का नामकरण अधिक सुविधाजनक, तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। यो छायावाद शब्द अपने अर्थ संकोच और एकांगिकता के कारण ग्राह्य नहीं है, इसका सीधा संबंध पुनर्जागरण काल से है। पर यह शब्द व्यापक परिप्रेक्ष्य में मौजूद नहीं है। रोमांटिक शब्द का समानार्थी शब्द ही इस युग को समग्रता में उजागर कर सकता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग रोमांटिसिज्म के अर्थ में किया जाने लगा है। अतः जिसे छायावाद युग कहा जाता है उसे स्वच्छंदतावाद युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। यह शब्द अपनी अर्थवत्ता में गांधी नेहरू युग के आदर्शों और अंतर विरोधों की समानांतरता पा लेता है। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी आंदोलन में जिस व्यक्तिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है वह गांधीवादी आंदोलन में आद्यंत मौजूद है। अंतरात्मा की आवाज इस युग में के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। स्वच्छंदतावादी साहित्य मुक्ति का साहित्य है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी नेहरू का आंदोलन समग्र अर्थ में मुक्ति का आंदोलन था। स्वच्छंदतावाद युग नाम स्वीकार कर लेने पर न तो इसे ईसाइयत के फैंटस्माटा से जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और न स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कर सरलीकरण की आवश्यकता। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। प्रसाद, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों को जो उसी काल में लिखे गए क्या छायावादी कहा जाएगा? इस काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि को स्वच्छंदतावादी तो कहा जा सकता है, छायावादी नहीं। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। द्विवेदी युग व्यक्ति वाचक नाम होने से यो ही अग्राह्य है, दूसरे इससे किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। तीसरे, इस नाम के कारण ऐतिहासिक प्रवाह खंडित हो जाता है। इस युग में निबंध और कविताएं अधिक लिखी गई। निबंध लेखकों में मुख्यतः महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह की गणना की जाती है। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। निबंध लेखकों में पहले तीन द्विवेदी कलम के लेखक हैं, शेष तीन पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंधकार हैं, क्योंकि उनमें स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। निबंध लेखकों के रूप में इन्हीं तीनों का महत्व है। द्विवेदी युग द्विवेदी कलम के कवियों में केवल मैथिली शरण गुप्त को ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है, वह भी साकेत के कारण। साकेत पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने स्वयं प्रकृत स्वच्छंदतावादी कहा है। वस्तुतः अगले संदर्भ में इन्हीं कवियों का विकास प्रसाद निराला पंत में हुआ, अतः इस युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद का युग नाम देना अधिक संगत है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। स्वच्छंदता युग के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सकता है। इसे पुनः तीन दशकों में बांटना अधिक संगत प्रतीत होता है। संक्षेप में इस काल के उपविभाजन का प्रारूप निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा, स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 1940 ईस्वी। चौथा, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 ईस्वी। उत्तर स्वच्छंदतावाद में पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व। दूसरा दशक है संतुलन की खोज और आधुनिकता। तीसरा दशक है आधुनिकता बोध की रचनाएं, नए संस्करण की भूमिका। इस नए संस्करण में कुछ पुरानी बातों को बदल दिया गया है और नए तथ्यों के आधार पर उनका नया अर्थापन किया गया है। इस संस्करण को अद्यतन बनाने के लिए बहुत सारे लेखकों, कवियों और रचनाकारों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब यह अद्यतन रूप में आपके सामने है। बच्चन सिंह। भूमिका यहीं पर समाप्त।